الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. نہیں بتاؤں گا آگے جا, ابھی تو تمہید بن رہی ہے. کیا چیز ہے, کیا اختلافات ہیں, کیسے ہوتے ہیں, ان کو ہم زیر بحث لائیں گے ابھی تھوڑی دیر. تو میں یہ گزارش کر رہا تھا کہ قرآن مجید جیسے دنیا کی کتابیں لکھی گئی ہیں ایسے ہی لکھا گیا, یعنی اس کے لیے کوئی آسمانی طریقہ نہیں اختیار کیا گیا. جو رسم الخط رائج تھا اس زمانے میں موجود تھا اس میں لکھ دیا گیا, جو لکھنے کے ذرائع موجود تھے یعنی کاغذ ہے تو قلم ہے تو ویسے بھی لکھا جا رہا تھا لکھ دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کیا کہ اس کے لکھنے کے لیے کوئی رسم الخط اپنی طرف سے سکھا دیا ہو جو دنیا میں ذرائع موجود تھے, یا یہ نہیں کیا کہ اس کے لیے کوئی خصوصی میٹیریل آسمان سے نازل کر دیا ہو جس میں اس کو لکھ کے دے دیا جائے. صحابہ کرام نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کو لکھوانے کا اہتمام کیا تو جو اس وقت رسم الخط موجود تھا اور جو ذرائع لکھنے کے موجود تھے. اب اس میں بہت بحث ہے, یعنی مطلب یہ ہے کہ یہ ایک بحث موجود ہے کہ اس وقت لکھنے کے کیا ذرائع موجود تھے, کیا کاغذ عرب میں پہنچ چکا تھا, کیا اس وقت چمڑے پہ لکھا جاتا تھا, کیا قرآن مجید کو ہڈیوں پر شانے پر اس طرح کی چیزوں پر لکھا گیا. بین یہی معاملہ رسم الخط کا, جیسے یہ ہمارے بعض تلامزہ نے بحث اٹھا دی, یہی معاملہ رسم الخط کا بھی ہے کہ یہ رسم الخط کیا وہ تھا کہ جس میں حروف اس طرح کے تھے کہ نقطے ڈالے بغیر ہی یہ بات واضح ہو جاتی تھی کہ فے ہے یا کاف ہے, یا کوئی نقطے تھے. اچھا پھر یہ بھی ایک بحث ہے کیا ڈالے گئے یا نہیں ڈالے گئے, یعنی یہ اپنی جگہ ایک الگ معاملہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان میں سے ہر چیز کے حق میں کچھ دلائل دیے جا سکتے ہیں اور ہر چیز کے بارے میں کوئی آدمی ایک یا دو رائے رکھ سکتا ہے. جو میرا اس وقت موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو رسم الخط بھی موجود تھا اس میں لکھ دیا گیا, اور اس رسم الخط کا جو قدیم ترین نمونہ اس وقت ہمارے پاس مستند طریقے سے محفوظ ہے, یعنی جس کے بارے میں کم و بیش اتفاق ہے کہ وہ مستند ہے, وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوط ہیں. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطوط ہیں ان پر میں نے بہت دقت نظر کے ساتھ کم و بیش 1.5-2 سال تک غور کیا تھا, مجھے اس میں کوئی ایسی چیز محسوس نہیں ہوئی کہ فے اور کاف کو الگ الگ طریقے سے لکھا جاتا, ایسا نہیں. تو اس سے قطع نظر کہ کیا طریقہ تھا کیا نہیں تھا, یعنی بہرحال اس میں نقطے نہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے نا, وہ خط ہمارے پاس موجود ہے, اس میں نقطے نہیں. اور یہ بھی بالکل واضح ہے کہ اس میں حروف کی ساخت میں فرق نہیں, یعنی اس میں اگر یہ بحث چھڑ گئی تو میں خط کو سامنے رکھ کے تجزیہ کر کے بتا دوں گا کہ نہیں اس وقت ہمارے پاس جو موجود ہے. اچھا اگرچہ میں محققین کو کہتا ہوں کہ بھائی اس پہ آپ کام کرتے رہے, لیکن میری قطعی رائے یہی ہے کہ نہیں, یہ ایک بحث الگ ہے. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو رسم الخط تھا وہ رسم الخط اختیار کر لیا گیا, جو لکھنے کا طریقہ تھا وہ اختیار کر لیا گیا, اور یہ بالکل واضح ہے کہ وہ مائل ہو یا کوفی ہو یا قدیم نسخ ہو. مثلا مائل تو اس وقت ہمارے پاس موجود نہیں ہے, کوفی ہمارے پاس کچھ موجود ہے, یعنی اس زمانے کا مستند. یعنی کہ مائل کیسے لکھا جاتا تھا اس کے بارے میں بہت سے محققین اور خطوط کے ماہرین بتاتے ہیں کہ وہ کیسے لکھا جاتا تھا, لیکن کوفی تو ہمارے پاس موجود ہے. کوفی کیا, چھوڑ دیں اس کو, قدیم نسخ موجود ہے. یعنی جو قدیم نسخ ہے قرآن مجید جس نسخ میں لکھا جاتا ہے اس کی بھی کچھ قدیم صورتیں ہیں, یہ موجود ہیں ہمارے پاس. وہ جو قدیم نسخ کی صورتیں موجود ہیں وہ قطع نظر, یعنی اس دور کی بات کر رہے ہیں جب نقطے لگا دیے گئے, وہ بھی بہت انڈیولپڈ, یعنی اس میں بھی بڑے مسئلے پیدا ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی رسم الخط کا ایجاد ہونا یہ کوئی الہی یا خداوندی معاملہ نہیں ہے, یہ تو ایسے ہی ہے کہ بھئی اب ہم کمپیوٹر پر لکھ رہے ہیں, ہم قلم سے لکھ رہے تھے, ہم کاغذ پر لکھ رہے تھے. اچھا ہم نے ایک آپ سے آپ سیاہی چھوڑنے والا قلم ایجاد کر لیا, اس سے پہلے باقاعدہ شاہ پر جبریل منگوانا پڑتا تھا اور دوات سیاہ برآمد کرنا پڑتی تھی. تو یہ جتنے ذرائع ہیں یہ ڈیولپ ہوتے رہتے ہیں, یعنی اس وقت جتنا بھی ہمارے پاس مواد موجود ہے اس میں سے اس بحث کو تھوڑی دیر کے لیے الگ کر دیجئے. یعنی کوئی محقق کل کو اس پر تحقیق کر کے یہ بتا دیتا ہے کہ یہ قرآن مجید فلاں خط میں لکھا گیا تھا, یا اس میں یہ اہتمام کیا گیا تھا جو قدیم نسخ ہمارے پاس موجود ہے. قدیم نسخ یعنی چوتھی پانچویں صدی کا قدیم نسخ, اس کی کتابیں تو موجود ہیں ہمارے پاس لکھی ہوئی موجود. یعنی ابن حزم کی المحلہ کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ظاہر ہے چوتھی پانچویں صدی کا اسی وقت کا خود ابن حزم کے ہاتھ کا کتاب الشدہ موجود اور اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اچھا, اسی طریقے سے اور بہت سی چیزیں, مثلا ابن قیم کی کتابیں ساتویں آٹھویں صدی کی موجود ہیں. میرے پاس بہت سی ایسی چیزیں موجود ہیں کہ جس میں ہمارے جلیل القدر لوگوں نے, مثلا بخاری مسلم, ان بڑے بڑے محدثین نے خود تحریر لکھی. وہ چیزیں تو موجود ہیں, ان کے بارے میں تو کسی تحقیق کی ضرورت نہیں, وہ بھی موجودہ نسخ سے بہت انڈیولپڈ. یعنی اس کے اندر بھی الفاظ کی ساخت, نقطوں کے مقامات کیسے ڈالے جائیں گے, اس میں بہت سی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. اور اس کا کوئی تعلق بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی مسئلے سے نہیں ہے, بلکہ جو انسانیت کے پاس ذرائع موجود ہیں. یعنی اس وقت ہمارے لیے ممکن ہو گیا ہے کہ ہم پورے کے پورے قرآن مجید کو ایک آلے میں ریکارڈ کر دیں اور محفوظ کر لیں, ممکن ہو گیا ہے. لیکن یہ اب سے پہلے ممکن نہیں تھا. تو قرآن مجید کا جو رسم الخط ہے اس میں وہ جیسا بھی تھا, آج کا فرض کر لیں تھوڑی دیر کے لیے, اس میں بھی اگر اس کو لکھ دیا جائے اور پڑا ہوا ہمارے پاس موجود نہ ہو, تو ظاہر ہے کہ اس میں کافی جگہوں کے اوپر دو تین چار پانچ آراء متن کو پڑھنے میں ہو جائیں گے, کافی جگہوں پر ہو جائیں گے. قرآن کے بارے میں ہم یہ جانتے ہیں کہ یہ اہتمام کیا گیا, اس کی وجہ یہ ہے, یہ آگے میں چل کے بتاؤں گا آپ کو. اس کو فی الحال آپ ٹیکن فار گرانٹڈ لیجیے, آگے اس کے دلائل دے دوں گا میں. یہ اہتمام کیا گیا کہ اس کو نہ صرف یہ کہ لکھ دیا گیا, جو اس وقت کے ذرائع موجود تھے ان پر لکھ دیا گیا, ان کے مطابق لکھ دیا گیا, جو رسم الخط موجود تھا اس کے مطابق لکھ دیا گیا, لکھ دیا گیا یعنی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوا دیا, صحابہ اکرام نے لکھوا دیا, نسلاً بعد نسلاً اسی نسخے کو ہم نقل کر رہے ہیں. اس میں خط کی ڈیولپمنٹ کے ساتھ تبدیلیاں ہو جاتی ہیں, لیکن اس کی صورت کم و بیش قائم رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. لکھ دیا گیا, لکھ ہی نہیں دیا گیا بلکہ پڑھ بھی دیا گیا. اور قرآن مجید جس طرح کہ ہم ابتدائی بحث میں دیکھ چکے ہیں کہ وہ صرف ایک نسخے کے تواتر اور اجماعی کے ساتھ منتقل نہیں ہوا, بلکہ زبانی پڑھنے کے بھی اجماع کے ساتھ منتقل ہوا, یعنی اس میں بھی اس کو تواتر, جس کو ہم نے قولی تواتر سے بیان کیا تھا. اب بھی آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید کے ساتھ یہ ایک غیر معمولی صورتحال ہے جو دنیا میں کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے, کہ سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ نسلاً بعد نسلاً اس کو پورا کا پورا یاد کر کے سنا رہے ہیں. یعنی یہ کسی اور کتاب کے ساتھ نہیں ہے. تو وہ پڑھا گیا, اب وہ پڑھا بھی گیا, وہ لکھا بھی گیا, دونوں صورتوں میں ہے. جب وہ پڑھا گیا ہے تو اگر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں پڑھا, یا وہ پڑھا ہوا صحابہ اکرام نے ہم کو منتقل نہیں کیا, بلکہ وہ جیسے بھی اس کو پڑھتے رہے وہ تو ان تک رہ گیا, البتہ ایک نسخہ لکھ کے دے دیا گیا کہ اب یہ امت اس کو جیسے چاہے پڑھ لے, اگر تو یہ صورت ہو تو پھر تو مسئلہ ابتدا ہی میں پیچیدہ ہو جائے گا. یعنی پھر جیسا بھی لکھا ہوا ہے اس کو ہم پڑھیں گے. اور اگر ایسا نہیں ہے, یعنی اس کو لکھ بھی دیا گیا ہے, اس کو پڑھا بھی گیا ہے, تو پھر انسانی حد تک اب اختلافات ہو نہیں سکتے. یعنی اب تو اصل میں متن کا اختلاف نہیں ہو سکتا, اب اختلاف جس چیز میں ہوگا وہ فہم کا اختلاف. یعنی میں جو بات عرض کرنا چاہتا ہوں وہ بات یہ, اس بات کو اگر اخذ کر لیا گیا ہے تو اب صورتحال کیا ہے. صورتحال یہ ہے کہ عقل عام یہ کہتی ہے کہ اگر یہ دونوں اہتمام کیے گئے, ایسا کیا گیا ہے, دونوں اہتمام کیے گئے ہیں, تو پھر بہرحال ہمیں یہ جستجو ہوگی کہ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پڑھا, صحابہ کرام نے پڑھا, تو وہ جو پڑھا ہوا ہے وہ کہاں ہے. ہو گیا نا, بحث ہوگی. تو یہ پڑھنا, اس کو اصطلاح میں کہتے ہیں قراءت. اس پڑھنے میں یہ سٹیٹمنٹ, یہ ایک یہ کہ قرآن میں بعض مقامات پر قراءت کے اختلافات ہیں, یعنی پڑھنے میں اختلافات ہیں. کس طرح کے اختلافات ہیں؟ یعنی ظاہر ہے کہ اس کی میں کچھ مثالیں آپ کو دیتا ہوں. موجودہ زمانے میں چونکہ طباعت بہت ترقی کر گئی ہے, تو جتنے اختلافات بھی نمایاں اختلافات بڑے بڑے ہوئے ہیں, یہ قرآن مجید جو ہے یہ چھاپ دیا ہے انہوں نے. اور اس قرآن مجید کو میں سے دکھا دیتا ہوں آپ کو. اس میں یہ جو درمیان میں آپ دیکھ رہے ہیں, یہ وہی قرآن ہے جو ہمارے آپ کے پاس موجود ہے. یعنی یہ قرآن جو لکھا ہوا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں نا درمیان میں, جو قرآن یہاں درمیان میں لکھا ہوا ہے, یہ دو ورق بنائے گئے ہیں نا, جیسے नजर आ रहा है आप लोगों को, ये बिल्कुल वही है जो आपके घर में है। लेकिन इसको पढ़ने में जहां जहां इख्तलाफात हुए वो ये, ये और ये नीचे बयान कर दिए। ये देख रहे हैं आप एक सफे पर कितने हैं। अच्छा, इसको आप खोलते चले जाइए, यही सूरत हाल आपको हर जगह मिले। ये इख्तलाफात हैं, क्या हैं ये अभी बहस करेंगे। मैं ये बता रहा हूं आपको कि ये इख्तलाफात जो हैं, जब एक आदमी कुरान मजीद के बारे में गुफ्तगू करेगा तो जैसे ही वो कुरान मजीद का इल्मी और तहकीकी मुताला करना चाहेगा तो ये उसको मयसर आ जाएगा। ये जो इख्तलाफात लिखे हुए हैं यहाँ पे, ये ऐसा नहीं है कि ये कोई यानी इस आदमी ने जिसने ये छापा छाप दिए हैं, ये किताबों में मौजूद थे, इन पर बहसें होती थी, इनके मुताबिक लोग पढ़ते रहे हैं। तो अब उन्होंने सहूलत के लिए ये किया है मौजूदा ज़माने में कि एक ऐसा कुरान का नुस्खा छाप दिया है जिसमें दरमियान में वो मतन है कुरान का जो हम में से हर शख्स के पास मौजूद है, और इख्तलाफात को बयान कर दिया। अच्छा, इन इख्तलाफात को फिर उन्होंने कैटेगराइज कर दिया हर सफ़े पर। यानी अरबी ज़ुबान में मिसाल के तौर पर आप एक लफ्ज़ को पढ़ते हैं, तो मैंने ये अर्ज़ किया था कि जब आप लफ्ज़ को पढ़ते हैं तो अगर आप उसको ज़बर के साथ पढ़ दें या ज़ेर के साथ पढ़ दें या पेश के साथ पढ़ दें तो इसमें मानी का फ़र्क हो जाता है। इसको कहते हैं एराब, यानी जिससे मानी का फ़र्क वाक़ हो जाता है। एक वो पढ़ने का मामला होता है जिसमें जिसको उन्होंने बयान किया था तलफ़ुस, यानी किसी चीज़ को वाला दालीन पढ़ना, दालीन पढ़ना है ना। अच्छा, ये जो दालीन को लंबा करना है, ज़रा छोटा रखना है, यानी ये फिर इख्तलाफात है। ये होते हैं ना दुनिया के हर, ये हर ज़बान में होते हैं। यानी एक है लहजे के इख्तलाफात और एक इख्तलाफ है कि जो मानी पर असरअंदाज होता है। तो ये इन्होंने ये भी कर दिया है कि ये जो इधर होते हैं ये इराब के इख्तलाफात हैं और ये जो नीचे हैं ये लहजे के इख्तलाफात हैं। आप इसको आसानी से कह सकते हैं कि लहजे हर सफ़े पर इसी तरह से कर दिया है। और उसका जो फ़ायदा होता है वो ये है कि आप एक ही नुस्खे में वो सारी चीज़ें देख लेते हैं जो 15-20-30 किताबों में मौजूद होती। अच्छा, ये जो इख्तलाफात मैंने आपको बताए, अब मैं आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ, ये तो एक तस्वीर सामने आ गई ना, ये सऊदी अरब का है। हाँ हाँ, मिलता है बाकी। ये मदीना मुनव्वरा का दारुल महाजर लिन नशर व तौज़ीह है, उसने छापा है इसको, और जद्दा में मकतबा कनूज़ुल मारिफा जो है उसने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया। यानी ये मैंने नहीं छापा, और मैंने आपसे अर्ज़ किया कि उन्होंने कोई ऐसी चीज़ नहीं कि अपने पास से निकाल के छाप दी है, यानी एक इल्मी सहूलत पैदा की है, जो चीज़ें किताबों में मौजूद थीं उनको उन्होंने सब्त कर दी उसके ऊपर। अब ये जो कुछ हमारे पास मौजूद है इसकी नौयत क्या है, यानी ये एक तो मैंने आपको जनरल कैटेगरी में बता दिया कि इख्तलाफात एराब में है, और एक इख्तलाफात लहजे में है, यानी वलद ज़ालीन में अब वो उसमें ज़ात को मिलके बोलना है या वलद ज़ालीन बोल लेना है, ये लहजे के इख्तलाफात है, इसका मानी पर कोई असर नहीं पड़ता। ये जो इस नौयत के इख्तलाफात हैं इनका ताल्लुक असल में मुख्तलिफ इलाकों के लोग जैसे कि बोलते हैं, और ये आपने देखा होगा कि अंग्रेज़ी की एक ही जुमला है उसको इंडियन एक्सेंट में भी बोला जा सकता है, ब्रिटिश में भी बोला जा सकता है, अमेरिकन में भी बोला जा सकता है। हमारी उर्दू का मामला भी ये कि दिल्ली वाले को उर्दू बोलते देखिए ना, ज़रा मालूम होता है निसार हो जाएगा। तो अभी पानी पेश करते हुए देख लें आप किसी लखनऊ वाले को, तो उसका एक ख़ास लहजा होता है, ख़ास अंदाज़ होता है लफ्ज़ को अदा करने का। यानी एक तो तलफ़्फ़ुज़ है और एक लहजा होता है जिसमें हर इलाके के इख्तलाफात होते हैं। तो ये सारे इख्तलाफात इन्होंने जैसे भी हैं वो इसमें जमा कर दिए। अब मैं आपको ये बताता हूँ, ज़ाहिर है कि इसमें बहुत तफसीली गुफ्तगू की कोई ज़रूरत भी नहीं है, बस एक तस्वीर सामने आनी चाहिए। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली सूरा है वो सूरा फातिहा। कुरान की ये सूरा नमाज में हम पढ़ते हैं, हर नमाज में पढ़ी जाती है, कुरान मजीद की बिल्कुल इब्तदाई सूरा है। तो एक नज़र ज़रा देखिए कि इसमें क्या इख्तलाफात है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में कोई इख्तलाफ नहीं, और इस पर अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए, मैं आपको पहले इसकी जो संगीन तरीन तस्वीर है वो सामने लाऊंगा, उसके बाद बहस करूंगा। उसकी वजह से वरना आप अप्रिशिएट नहीं कर सकेंगे। इलम की दुनिया असल में हकायक को छुपाने का नाम नहीं है, बल्कि उनको फेस करने, सामना करने का नाम है ना। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन में अल्हम्दुलिल्लाह कोई इख्तलाफ नहीं, अर्रहमान अर्रहीम में भी नहीं है। उसके बाद क्या है, मालिक यौमिद्दीन। इसमें दो तरीकों से इसको पढ़ा है लोगों ने, मालिक यौमिद्दीन और मलिक यौमिद्दीन, यानी ये दो तरीकों से इसको पढ़ा जाता है। मालिक यौमिद्दीन में आप फरमाएंगे क्या फर्क पड़ा, इन फर्क ये पड़ा कि कोई बड़ा फर्क तो नहीं पड़ा, लेकिन मानी मुख्तलिफ हो गए। रोजे जजा का मालिक, मालिक बिल्कुल उसी मानी में अरबी में होता है जैसे आपकी उर्दू में होता है मालिक यौमिद्दीन, और मलिक यौमिद्दीन का मतलब होगा रोजे जजा का बादशाह, यानी एक में मालिक और एक में बादशाह, ये फर्क वाकई हो गया इस पे। अच्छा, उसके बाद एक और फर्क ये है कि इहदिन सिरातल मुस्तकीम, इसमें आपने देखा होगा कुरान मजीद, क्योंकि ये सूरत बहुत पढ़ते हैं तो स्वाद से लिखा जाता है ना, तो ये सीन से भी लोगों ने लिखा है, लेकिन इससे मानी में कोई खास फर्क वाक्य नहीं होता, यानी ये सिर्फ इमला का मामला है, सीन से लिख दीजिए या स्वाद से लिख दीजिए। अच्छा, उसके बाद जो अगला इख्तलाफ है वो है कि बाद लोगों ने ना गैरिल मकदूब अलैहिम, तो उसको पढ़ा अलैहिम और बाद में पढ़ा अलैहिम, ये है तो इख्तलाफ इराब का, लेकिन इससे मानी में कोई फर्क वाक्य नहीं। अच्छा, उसके बाद वो इख्तलाफात हैं इसमें कि जिसमें बस यूं समझिए पढ़ने का अंदाज, तो इसमें एक ये है कि अर रहीम मालिक यौमिद्दीन, यानी दो मीम इकट्ठी हो गई है ना, तो उसको वो अलग अलग करने की बजाय मिला देते हैं पढ़ते हुए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता मानी में। अच्छा, इसी तरह जो अलैहिम है तो अलैहिम इसको मिला देते हैं अलैहिमु करके पढ़ देते हैं, तो ये भी कोई मानी का फर्क नहीं पड़ता। ये मैंने आपको एक छोटी सूरा जो आम तौर पर पढ़ी जाती है उसके बारे में बताया। अच्छा, अब यहां तो सिर्फ मानी में जो चीज फर्क का बायस बनी है वो एक लफ्ज था, वो मालिक का लफ्ज था, और वो भी मानी में ऐसे फर्क का बायस नहीं बना कि जो कोई अकीदे पर, ईमान पर, हुक्म पर असरअंदाज होता, वो नहीं बना, जबकि यानी मफहूम तो बदल गया, बादशाह रोजे जजा का, क्यामत के दिन का बादशाह और क्यामत के दिन का मालिक, ये फर्क वाकई हो गया। अच्छा, अब उसके बाद देखिए एक और कुरान मजीद की सूरा, उससे आप बड़ी हद तक ये समझ सकेंगे कि ये फर्क कैसे हो जाता है, यानी रस्मुल खत से ये फर्क कैसे हो जाता है। यहां भी देखिए ना कि मालिक में क्या हुआ है, मीम लाम काफ, जिस तरह आप मुल्क लिखते हैं इस तरह लिखा हुआ है, तो आप मीम के ऊपर एक खड़ा अलिफ डाल दें तो मालिक हो गया, और ना डालें तो मालिक हो गया, और अगर उर्दू में पढ़े तो मुल्क भी हो जाएगा, यानी ये इम्कानात हो गए ना पैदा उसके नतीजे में, तो दो वहां पर हो गए। ये सूरह बलद है, कुरान मजीद की एक सूरह है सूरह बलद। अब इसमें देखिए, इसमें बहुत दिलचस्प मामला है, इससे बहुत वाज़े हो जाएगा कि क्या होता है। सबसे पहला जो इख्तलाफ है इसमें वो ये है कि आयत है अयहसब अल्लम यकदरा अलैह अहद, फिर आता है अयहसब अल्लम यराहु अहद, अयहसब, तो बाद लोगों ने इसको पढ़ा अयहसब, अयहसब या अयहसब, यानी सीन पे जबर या जेर, इससे मानी में कोई फर्क नहीं। आप कह सकते हैं कि इस लफ्ज को अदा करने के ये दो तलफ़ ज़रबों में राइज, तो बाद ने उससे पढ़ दिया, बाद ने उससे पढ़ दिया। उसके बाद एक लफ्ज आता है यकूल अहलक तो माल लुबदा, वो कहता है कि मैंने लुबदा माल लुढ़ा दिया, खर्च कर दिया। जब उससे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो कहता है बहुत खर्च करो, मैंने ढेरों माल लुटा दिया। तो इसमें यकूल अहलक तो मालन तक तो कोई इख्तलाफ नहीं, लुबदा को बाद लोगों ने लुबदा पढ़ा है और बाद ने लुबदा पढ़ा है, यकूल अहलक तो मालन लुबदा, इससे भी बिल्कुल उसी तरह का फर्क मानी में पैदा होता है जैसे मालिक और मलिक में हो गया। यानी लुबदा का मतलब है ढेरों माल, बहुत ज्यादा माल, और लुबदा का मतलब है बहुत ज्यादा जमा किया हुआ माल। यानी एक फर्क तो वाकई हो गया शेड में लफ्ज के, लेकिन कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। फिर उसके बाद अलम नजल लहू ऐनैन व लिसानम व शफतैन व हदैना हुन नजदैन फलक तहमल अकबा व मा अदरा का मल अकबा, तक कोई इख्तलाफ नहीं। उसके बाद आता है फक्को रकबा, यानी मतलब ये था उसका कि अल्लाह ताला कहते हैं कि वो घाटी जो आदमी को नजात पाने के लिए चढ़नी है, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ वो क्या है। पीछे से मजमून ये चला आ रहा है, तो उसमें पहली चीज़ ये बताई है कि ग़ुलामों को आज़ाद करना, पहली चीज़ जो बताई है। फक्को रकबा, फक्को रकबा का मतलब है ग़ुलामों को गर्दन छुड़ाना, यानी लफ्जी आप तर्जुमा कर दें तो गर्दन छुड़ाना, और मुराद है उससे यानी ग़ुलामों को आज़ाद करना। उसलूब ये इख्तियार किया गया है लोगों को तरगीब देने के लिए, ताकि ग़ुलामी की लानत से लोगों को निकाला जाए। तो फक्को रकबा, अब इसको बाद लोगों ने पढ़ा है फक्का रकबतन, ये है हमारे पास जो कुरान का मतन है उसमें फक्को रकबतन, और बाद लोगों ने पढ़ा है फक्का रकबतन। क्या हुआ, यानी अल्फाज में कोई तब्दीली नहीं हुई, ये वही अरबी जुबान का मसला, जेरे जबरे दरम बरम हो गए। तो क्या फर्क पड़ा, क्योंकि अरबी में तो इससे मानी में फर्क पड़ जाता है, क्या फर्क पड़ा। फक्को रकबा का मतलब है गर्दने छुड़ाना, और फक्का रकबतन का मतलब होगा उसने गर्दन छुड़ाई। आओ मैं तुम्हें बताऊं कि वो घाटी क्या है जो तुम नजात के लिए चढ़ोगे, ये कि किसी शख्स ने गर्दन छुड़ाई, एक तर्जमा ये होगा, और एक होगा ये कि गर्दन छुड़ाई जाए या गर्दन छुड़ाना। यानी एक में वो चीज़ वर्बल नाउन की शक्ल में इस्तेमाल हुई है, और एक में वर्ब माजी का फेल है फक्को रकबतन। तो फक्को रकबतन की बजाय फक्का रकबा। अच्छा, फिर उसके बाद था औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, यानी पहली बात अल्लाह ताला ने ये कही थी कि गर्दनें छुड़ाई जाएं, गुलामों को आज़ाद किया जाए। दूसरी ये कही थी कि किसी कहत के दिन में जब लोगों के ऊपर कोई उस्ताद आ जाए उसमें किसी को खाना खिलाना, यानी ये दूसरी बात बताई थी निजात हासिल करने के लिए। तो उसको बाद लोगों ने पढ़ा औ अतामा फी यौमिन ज़ी मसगबा, यानी ये कि उसमें खाना खिलाना, उसके बजाय क्या, या उसने खाना खिलाया, यानी बिल्कुल वही तब्दीली जो पीछे थी वो आगे भी हो गई। अच्छा, इसके अलावा जो छोटे मोटे इसमें इख्तलाफ हैं वही सौत आवाज़ के इख्तलाफ, यानी इससे आप एक तस्वीर सामने ला सकते हैं कि इसकी नौइयत क्या बन जाती है। अच्छा, ऐसे ही अब उसके बाद ये देखिए कि वो इख्तलाफ जो मफहूम और मानी पर असरअंदाज हो जाता है, और ऐसे असरअंदाज हो जाता है कि फिर उसमें यानी हुक्म में फर्क पड़ जाएगा। ये तो अभी तक तो सूरतेहाल ये थी ना कि सिर्फ तर्जुमे में, मफहूम में, मुद्दा में फर्क पड़ा। उसकी बड़ी ही एक आम मिसाल है जिसके ऊपर चूंकि बहुत जंगो जदाल होता रहता है हमारे यहाँ, वही मैं पेश कर देता हूँ। वजू करने के लिए जो हुक्म कुरान में बयान हुआ है, यानी वजू करने का हुक्म, तो उसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सला फ़ग्सिलु वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफिक वमसऊ बिरऊसिकुम व अर्जुलकुम इलल काबैन। ईमान वालो, जब तुम नमाज के लिए खड़े होते हो तो अपने मुंह धो और अपने हाथ कोहनियों तक धो लो, और अपने सरों का मसा कर लो, और अपने पांव टखनों तक धो लो। बाद लोगों ने इसमें अर्जुलकुम को पढ़ा है अर्जुलकुम। इससे जो फर्क वाक्य होता है वो ये होता है कि तर्जुमा ये हो जाएगा कि और अपने सरों का मसा करो और पांव का भी मसा कर लो, हो गया ना मसला। यानी अब गोया एक के नजदीक पांव धोना जरूरी होगा और एक के नजदीक मसा कर लेना, यही अल्लाह का हुक्म। तो ये मैंने उसकी मिसाल दे दी। इस तरह के इख्तलाफात, ये कोई ज़्यादा तफसील इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, बता दिया मैंने आपको कि कैसे होते हैं, तस्वीर भी आपने देख ली, हर सफ़े की यही सूरत हाल है। यानी चार पाँच दस आपको मिल जाएंगी इस तरह की चीज़ें, उनमें वो जगह जहां पर हुक्म में फर्क पड़ जाता है, मानी में फर्क पड़ जाता है, वो चंद है, ये ठीक है। लेकिन भाई चंद हैं तो, यानी एक चीज मौजूद है ना, देखना पड़ेगा ना क्या हकीकत है उसकी, क्या चीज है। अब जवाब दे रहे हैं, मैं तो ही मसला बता रहा हूं। यानी क्या हुआ है ये अभी मौजू नहीं है, मौजू ये क्या है, पहले उसको समझ लेना क्या है। तो आप जरा पढ़िए जो मैंने लिखा है इसमें। एक ये कि कुरान में बाज मकामात पर किरात के इख्तलाफात हैं, यानी ये माना जाता है आम तौर पर कि कुरान में बाज मकामात पर किरात के इख्तलाफात हैं, पढ़ने के इख्तलाफात हैं। मैंने इस जुमले की तशरीह की कि किरात का मतलब क्या है और इसके इख्तलाफात किस नौयत के हैं, ये आपको बता दिए। ये इख्तलाफात लफ्जों के अदा करने ही में नहीं है, बाज जगह इनके मानी पर भी असरअंदाज होते हैं। ये मिसाल दी मैंने आपको भी, यानी एक तो यह ना कि कोई आदमी कहे कि जी भाई ये लहजे का मसला है, इससे क्या फर्क पड़ता है, ये तो होता ही रहता। दुनिया की हर किताब को जब अरबों इंसान पढ़ेंगे, नस्लन बाद नस्लन पढ़ेंगे, अरब पढ़ेंगे, अजम पढ़ेंगे, खुद अरबों के भी मुख्तलिफ कबीले पढ़ेंगे, तो हो जाएगा ना लहजे का इख्तलाफ, ये कोई मसला नहीं है बड़ा। लेकिन जो असल मसला है ये है कि ये इख्तलाफात लफ्जों के अदा करने में, यानी उनके लहजे ही में नहीं है, बाज़ जगह इनके मानी, बाज़ जगह इनके मानी पर भी असरअंदाज होते हैं। इस सूरत में बज़ाहिर इख्तलाफात के मौके पर कोई चीज फैसला कुन नहीं रहती, नहीं रहेगी ना। यानी एक आदमी कुरान से साबित करेगा कि मसा पांव पर कर लेना काफी है, और दूसरा कुरान से साबित करेगा कि दोनों जरूरी। एक सादा मिसाल ले लें, अमली जिंदगी से मतलब मिसाल है। इस सूरत में बज़ाहिर, अच्छा अब कुरान है मीजान, फैसला कैसे करें। अब मैं इसकी मिसाल देता हूं आपको। एक आदमी ये कहता है जी फैसला हम इससे कर लेंगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पांव धोए, तो मीजान कौन बन गए, तरतीब उलट गई ना। यानी आप मसले की संगीनी को महसूस करें कि होना यह था कि अगर हमारे पास दो चार लोग आके ये बताते कि क्या पांव धोए जाए या पांव पे मसा किया जाए, तो हम कुरान पेश करते क्योंकि उसमें मसला जेरे बहस आया है, और कहते कुरान तो कहते धोए जाए। मसलन इस वक्त हमारे यहां मुसलमानों के जो दो बड़े गिरोह हैं, शिया और अहले सुन्नत, उनमें ये इख्तलाफ है। यानी एक गिरोह ये कहता है कि पांव पर मसा करना यही हुक्म है, चुनाचे वो जब वजू शुरू करते हैं तो ऐसे करते हैं कि पांव तो जो गंदे होते हैं ना, तो पहले धो लेते हैं और उसके बाद वजू करते हैं जब, तो सिर्फ पांव मसा कर लेते हैं, और अगर गंदे नहीं है पांव तो ठीक है मसा कर लेंगे, क्योंकि उनके नजदीक यही। अब मिसाल के तौर पर एक शिया आलिम है, वो बैठा हुआ है और आप उससे कहते हैं कि भाई पांव धोने चाहिए, तो अगर ये सूरत हाल है जो मैंने आपको बता दी, तो इसमें वो कहेगा कि कुरान मजीद में जो किरात एक है वो अर्जुल कुंभी है, इसलिए मैंने मसा कर लिया, क्या एतराज है। आप कहते हैं कुरान में एक किरात अर्जुल कुंभी है इसलिए धोने जरूरी हैं। अच्छा उसके बाद आगे गुफ्तगू होती है, तो आप कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम ने तो हमेशा पांव धोए हैं, यानी जब भी वजू किया सवाए इसके जुराबें पहनी हुई तो आपने धोए हैं पांव, कहते हैं ना आप। तो असल में अब आप इस्तदलाल कुरान से बाहर से लाकर फैसला कर रहे हैं, यानी मीजान और फुरकान होने की तरतीब उलट गई। ये मसला अगर मैं वाजे कर सका हूं तो मेरी इबारत भी समझ में आ जाएगी। एक ये कि कुरान में बाज मकामात पर किरात के इख्तलाफात हैं, ये इख्तलाफात लफ्जों के अदा करने ही में नहीं। असल में आप लोग पिछले सारे अरसे के दौरान में जुबान और अदब की बहसें सुनते रहे हैं, आप जरा थोड़ा सा संजीदा भी हो जाए। इस सूरत में बज़ाहिर इख्तलाफात के मौके पर कोई चीज फैसला कौन करे, बज़ाहिर यानी बज़ाहिर सूरत हाल ये हो जाती है कि इतने जोर शोर से हमने ये गुफ्तगू की कि कुरान मीजान और फुरकान है, और यहां आके तरतीब उलट गई ना, मसला ये हो गया। सूरह मायदा की आयत, ये वही आयत जो मैंने अभी पढ़ी, सूरह मायदा 5 नंबर सूरह है, उसकी आयत 6 में अर्जुलकुम मिसाल के तौर पर अगर नस्ब व जर दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है, नस्ब जबर और जर जेर, अगर नस्ब व जर दोनों के साथ पढ़ा जा सकता है तो कुरान की बुनियाद पर यह बात फिर पूरी कतईयत के साथ किस तरह कही जा सकती है कि वजू में पांव लाजमन धोए जाएंगे, उन पर मसा नहीं किया जा सकता। ये मसला पैदा हो गया ना, यानी मसले को अगर आपने अप्रिशिएट कर लिया है कि यह मसला पैदा हो गया। अगर कुरान में किरात का इख्तलाफ माना जाए तो चलिए एक वो जगह है जहां आप ये कह के आगे बढ़ जाएंगे कि ये तो लबो लहजे का इख्तलाफ, इससे कोई मानी पे थोड़ा असर पड़ता है। दूसरी जगह आप ये कह के आगे बढ़ जाएंगे, भाई मानी पर असर तो पड़ा है लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि रोजे जजा का मालिक हुआ या बादशाह हुआ। मैंने मिसाल वो दी है कि जिस मिसाल में हुक्म का फर्क पड़ रहा है, यानी जहां अब फैसला करना है मुझे वजू करना है या पांव धोने हैं या मसा करना है। अच्छा, फैसला कहां से लूं? कुरान से लूं तो सूरत हाल ये है, और अगर बाहर से लूं तो ऊपर का सफा जो है वो प्रेस को वापस करना पड़ जाता है। यानी मुश्किल समझ गया आप, मुश्किल ये है। अच्छा, तो अब ये मसला हो गया, यानी इकरात के इख्तलाफात में जो मसला है वो ये कि जो बात हमने की थी, मैंने उस वक्त आपसे अर्ज किया था कि बाहर कितनी कॉमन सेंस की बात लगती है, कितनी वाजे बात है, और उसके बाद उस जुमले को पढ़िए। ताहम चंद सवालात ऐसे हैं जो बाज लोगों के लिए इस मामले में बायस तरद्दुद हो सकते हैं। यानी ये बात कहने के बाद आप चले गए, आपको मजहब से दिलचस्पी हो गई, आप गए, और आपको जब ये मालूम हुआ तो आप लौट के आएंगे ना कि भाई वो बात अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ है, ये क्या मसला है। तो एक ये सवाल पैदा हो सकता है कि कुरान मजीद के किरातों के ये जो इख्तलाफात है, ये जब मानी पर असरअंदाज होते हैं, जब मानी पर असरअंदाज होते हैं, इससे पहले पहले मैं बात कोई ज्यादा मसला नहीं पड़ेगी, लेकिन जब मानी पर असरअंदाज होते हैं और इस तरह असरअंदाज हो जाते हैं कि उसमें अब फैसला करने में दो राय हो गई, तो कुरान फिर मीजान और फुरकान कैसे रहा? अगर आप कहेंगे बाहर से फैसला कराया जाए तो बात तो खत्म हो गई ना, फिर कोई और बात की जाए, यानी इल्म अकल नहीं गवारा करेंगे इस बात को, इल्ला ये कि फिर मैं आपसे ये कहूं कि आप मेरी बात मान लें इसलिए मुझ पर इल्हाम होता है, वरना तो कोई चारा नहीं ना, बहस करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरे ये कि कुरान का मफहूम हम जो, ये दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल पैदा होता है। दूसरे ये कि कुरान का मफहूम हम जो कुछ भी समझते हैं, जो भी मफहूम समझते हैं, मैंने समझा, आपने समझा, किसी और ने समझा, इसके अल्फाज से और इसके जुमलों की तरकीबी से समझते हैं, यानी और तो कोई जरिया नहीं हमारे पास। हमारा ये फहम, यानी ये जो हमने समझा है, जबानो बयान से मुतल्लक जिन उलूम पर मौकूफ है, यानी हमने जुबान का इल्म हासिल किया ना, तो कुछ उलूम है जो जुबान से मुतल्लक उलूम है, जिन पे हमने बड़ी तफसीली गुफ्तगुएं भी की हैं, तो जिन उलूम पर मौकूफ है वो क्या उलूम है? यानी लुगत। लुगत का मतलब यह है कि वो इल्म जो ये बताता है लफ्ज के मानी क्या है। लुगत से मुराद आप डिक्शनरी लीजिए, यानी फन, वो इल्म जो ये बताता है कि लफ्ज के मानी क्या है। नहव, यानी वो इल्म जो जुमले की तरकीब पर बहस करता है, जिसको आप कहते हैं ग्रामर। अरबी जुबान में नहव का लफ्ज ग्रामर के मानी में इस्तेमाल होता है। और बलागत, बलागत वो इल्म है जिसमें ये बहस की जाती है कि तमसील क्या होती है, इस्तारा क्या होता है, तशबीह क्या होती है। ये है ना, ये जाहिर है कि इससे भी, भाई मैं कह रहा हूं कि किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, आप कहते हैं कि यहां तो असल में शेर से मुराद चिड़ियाघर का शेर है, समझ रहे ना ये बात, और वहां शेर असल में मैदान करबला में उतरने वाले जलील कदर नवासा रसूल है, यानी अनीस का मरसिया का शेर है ना। तो जाहिर है कि इसमें अब ये कौन सी चीज है कि जो तय करेगी, जो चीज तय करती है उस फन को कहते हैं बलागत, जो ये तय करती है। हमारा ये फहम जुबान बयान से मुतल्लक जिन उलूम पर मौकूफ है, यानी लुगत, नहव और बलागत वगैरह, वो सब जन्नी है। यानी जितने उलूम है, स्टेटमेंट ये है, जैसे पहले एक स्टेटमेंट है ना जिसने हमको बिल्कुल दोराए पर खड़ा कर दिया, लाके इसने भी खड़ा कर दिया, वो सब जन्नी है। कैसे जन्नी है ये आगे बयान होगा, कैसे जन्नी है, यानी क्योंकि एक बड़े आलिम ने, एक बड़े मुहक्किक ने, जिनका बड़ा मर्तबा है इस्लामी दुनिया में और जिनकी तफसीर बड़ी गैर मामूली हैसियत रखती है, उन्होंने ये पूरा मुकदमा बयान किया है अल्फाज में, वो मैंने नकल कर दिया उनका, तो इसलिए आपकी समझ में आ जाएगा जन्नी का क्या मतलब है। वगैरह सब जन्नी है। इसके बाद फिर ये बात किस तरह कही जा सकती है कि कुरान के अल्फाज की दलालत उसके मफहूम पर बिल्कुल कतई है, यानी वो जो हमने ऊपर दूसरा नतीजा निकाला था, अगर ये बात ठीक है कि जिन उलूम से हम जुबान तक पहुंच रहे हैं वो जन्नी है, यानी उनसे जन्नी का मतलब है यकीनी बात नहीं मालूम होती। जन का लफ्ज असल में यकीन के मुकाबले में इस्तेमाल होता है इल्म की दुनिया में। आप कहते हैं ना कि भाई इस लफ्ज के यकीनन यही मानी है, तो कैसे मालूम है आप यकीनन यही मानी है? नहीं, इसका गुमान गालिब है कि ये मानी है, तो जब मानी के इलम में गुमाने गालिब पर आप खड़े हो गए तो आगे फिर कैसे कहेंगे कि अल्फाज की दलालत अपने मफहूम पर कतई है, यानी पहुंचने का रास्ता ही महदूश हो गया। इमाम राजी ने इस सवाल की तकरीर अपनी तफसीर में इस तरह की। इमाम राजी बड़े लोगों में से, उनकी तफसीर तफसीरुल कबीर कुरान मजीद की वो महात तफसीर में शुमार होती है। उन्होंने उसके मुकदमे में ये सारी बहसें की हैं, तो ये बहस उन्होंने उठाई। उनके बहस उठाने का एक पस मंजर है क्यों उन्होंने उठाई है, यानी उनको बाज मामलात में, बाज फलसफियाना मबाहिस में इसरार था कि बात यूं है, उसके खिलाफ बाज लोगों ने कुरान की आयत पेश कर दी। यानी आपने इल्मी और अकली तौर पर एक मुकदमा कायम किया और एक आदमी ने कहा कि जी ये मुकदमा इल्मी और अकली तौर पर जो आप कायम कर रहे हैं, कुरान तो इसके खिलाफ है, उसमें तो ये लिखा हुआ है। तो इसमें फिर ये बहस पैदा हुई कि वो बातें जो अकलन बिल्कुल कतई हैं, यानी जिनके खिलाफ नहीं माना जा सकता, तो क्या महज आयत के अल्फाज के मफहूम से मरूब होकर मैं ये अकली बात छोड़ दूं? तो उसका जवाब उन्होंने ये दिया कि भाई बात यह है कि ये नहीं छोड़ी जा सकती, ये अकली बात जो मैं समझा हूं, ये बात छोड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि अल्फाज के मानी तक पहुंचने के जितने उलूम है सब जन्नी है, तो इसलिए हो सकता है कि वो मतलब ना हो, तो मैं अल्फाज के जन्नी मफहूम की तरफ जाने की बजाय यकीनी अकली मुकदमात पर खड़ा रहूंगा। ये मसला पैदा कर दिया उन्होंने। देखिए मैं इसकी मिसाल आपको देता हूं, अगरचे उस मसले को मैं थोड़ा सा वाजे करूंगा आगे जाके जब ये बहस आएगी। जी हाँ, जोए से है, इस उम्र में भी आपको किसी दूसरी चीज से चाहिए? जन्नी यानी यकीनी के मुकाबले में, जैसे आप बोलते ना जन्नो गुमान बोलते हैं, जन्नो तखमीन बोलते हैं उर्दू में, तो वो जन है जी, वो जनो मर्द वाला नहीं है। वो जो है ना कि खुदा पंज अंगुष्ट यकसा ना कर ना हर जन जन्नस ना हर मर्द मर्द, ये वो नहीं है। ये हुस्न जन वाला जन। और मुसीबत ये है कि ये बताने के बाद भी जन वही रहा। खैर जनाब, तो मैं ये गुजारिश कर रहा था कि उनको जो मसला पेश आया वो ये था कि उन्होंने ये मुकदमा कायम किया इमाम राजी ने। ये एक जमाने की बड़ी बहस है, हो सकता है आप समझे कि भाई मुसलमान उलमा किन बहसों में पड़े रहते थे, लेकिन बहरहाल हर दौर की बहसें होती हैं, हर दौर के मसले होते हैं। एक बहस ये थी कि अल्लाह ताला अगर किसी बंदे को कोई हुक्म देते हैं तो ऐसा हुक्म भी क्या दे सकते हैं कि जिसको उठा नहीं सकते। मसलन एक आदमी को उन्होंने इससे महरूम कर दिया, उसके दिल के अंदर ऐसा आला फिट कर दिया कि ये ईमान नहीं ला सकता, मिसाल के तौर पर, और फिर उसे कहते ही मान लाओ। क्यामत में लोगों को सामने खड़ा किया और उनकी कमर में यह सलाहियत ही खत्म कर दी कि वो झुककर सजदा करें और कहा सजदा करो। तो ये जो क्या इस तरह का हुक्म अल्लाह ताला दे सकते हैं, है ना एक नाजुक मिसाल कि भाई अल्लाह ताला ने लोगों को सामने खड़ा कर दिया और कमर तख्ता कर दी, झुक नहीं सकते और कहा कि सजदा करो। तो ये इस तरह का हुक्म देने को इल्मी इस्तलाह में कहते हैं तकलीफ माला युताक। और ये जो बहस है इसको समझना भी तकलीफ माला युताक। तो सवाल ये पैदा हुआ कि क्या अल्लाह ताला इस तरह का हुक्म दे सकते हैं। तो इन लोगों का यानी इमाम राजी जो है ये बड़े फलसफी भी हैं, अपने जमाने के बड़े अकली उलूम के माहिर हैं, तो इन लोगों ने ये जवाब दिया कि नहीं दे सकते, नहीं ये अल्लाह ताला की रहमत से बईद है, अदल से बईद है, इंसाफ से बईद है। ये एक काम एक आदमी करने की सलाहियत नहीं रखता आप हुक्म दे रहे हैं। यानी मिसाल के तौर पर जैसे कि हमको हुक्म दे दिया जाए कि तुम लोगों ने इस दफा फजर की नमाज कल चांद पे जाके पढ़नी, भाई ये नहीं कर सकते ना हम, तो क्या अल्लाह ताला इस तरह का हुक्म दे सकता है? उनका नहीं दे सकता। बड़ी माकूल बात है, नहीं देना चाहिए, बज़ाहिर बात माकूल है। उनका ये तो तय हो गया अच्छा कि अल्लाह ताला नहीं दे सकता। एक दूसरा गिरोह था, उसने कहा कि नहीं देता है, दे सकता है, दे सक क्यों दे सकता है भाई, मालिकुल मुल्क है, बादशाह है कायनात का, मर्जी है उसकी, दे, आप कौन होते हैं उस पर एतराज करने वाले। इसके ऊपर उन्होंने बड़े आला इल्मी दलायल दे के तो ये साबित कर दिया कि दे सकता है। جب ثابت کر دیا کہ دے سکتا ہے, اور اس کے بعد قرآن میں آیا تھا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا, اللہ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. تو اب یہ سوال پیدا ہوا کہ دے سکتا ہے, یہ تو عقلاً ثابت ہو گیا, اور اللہ کہتا ہے نہیں دے سکتا. تو انہوں نے کہا یہ آیت جو ہے عربی میں ہے, اور عربی زبان جو ہے اس کا فہم بعض فنون پر موقوف ہے, لغت, نحو, بلاغت, اور وہ سب ظنی ہیں. تو آیت کا جو مطلب ہم سمجھ رہے ہیں وہ ظنی ہے. جب آیت کا مطلب ظنی ہے تو اس کو ایک طرف رکھو, ہم یہ مانتے ہیں کہ دے سکتا ہے. واضح ہوگی نا بات آپ لوگوں, یعنی یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں یہ آپ پیراگراف پڑھ رہے ہیں. دوسرے یہ کہ قرآن کا مفہوم ہم جو کچھ بھی سمجھتے ہیں اس کے الفاظ سے اور اس کے جملوں کی ترکیب ہی سے سمجھتے ہیں, ہمارا یہ فہم زبان و بیان سے متعلق جن علوم پر موقوف ہے, یہ جو میں اس وقت پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے عبارتیں, یعنی یہ میرا رائے نہیں ہے, یہ میں وہ اعتراض نقل کر رہا ہوں جو اس پہلے بیان پر ہوں گے. تو ظاہر ہے ان کو نقل کریں گے نا تو آپ پازیٹیولی نقل کریں گے, بھائی یہ بات کہی جا سکتی ہے, پھر اس کو بیان کریں گے. اب اس کا جواب ہے یہ آگے دیں گے آگے جا کے. فی الحال آپ اس کو سمجھیے کہ اعتراض کیا پیدا ہوتا ہے. اس کے بعد پھر یہ بات کس طرح کہی جا سکتی ہے کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے, یعنی اوپر کی بات پھر کہی کیسے جا سکتی. ہم نے یہ کہا تھا کہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ اپنے مفہوم کو واضح کر دیتے ہیں. جب معلوم ہوا کہ لا یکلف اللہ نفسا کو جدھر سے مرضی پڑھتے رہیے بہرحال تکلیفیں مالا یتاق دی جانی, تو بس قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں رہی اس تقریر کے نتیجے میں. امام رازی نے اس سوال کی تقریر اپنی تفسیر میں اس طرح کی ہے, یہ انہوں نے گویا جو لوگ یہ کہتے ہیں, جو اہل علم یہ کہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر قطعی نہیں ہے, یعنی اوپر کی سٹیٹمنٹ جو ہم نے دی تھی اس کے خلاف کھڑے ہیں, تو وہ کیا کہتے ہیں, کیسے کہتے ہیں, یہ انہوں نے ان کا پورا مقدمہ بیان کر دیا. وہ کہتے ہیں کہ دلالت الالفاظ علی معانیہا ظنیہ, یعنی یہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. وہ کہتے ہیں دنیا بھر میں جتنی زبانیں ہیں ان کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ہوتی ظنی, یعنی کوئی ایسی زبان ایجاد ہی نہیں ہو سکی آج تک کہ جس کے الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ظنی نہ ہو. کیونکہ کیوں, یہ آگے وہ بتائیں کہ کیوں. وہ کہتے ہیں دلالت الالفاظ علی معانیہا ظنی. اب یہ بحث جو ہے یہ قرآن سے یا عربی زبان سے اٹھ گئی ہے, ایک زبان کی علمی بحث میں داخل ہو گئی ہے. یعنی انہوں نے یہ کہا کہ الفاظ کی دلالت اپنے مفہوم پر ہوتی ظنی ہے, لِأَنَّهَا مَوْقُوفَةٌ عَلَىٰ نَقْلِ اللُّغَاتِ, اس لیے کیوں ظنی ہے, کیا وجہ ہے. تو انہوں نے کہا کہ اس لیے کہ بھائی یہ جو بھی معنی ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں الفاظ کے, اس میں پہلا مسئلہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو لغت نقل ہوا ہے, یہ مثال کے طور پر ہم ڈکشنری اٹھائی اور اس میں ہم نے کہا کہ ذہبہ کا مطلب ہے وہ گیا, تو یہ نقل ہو گیا ہے نا, اسی پر مبنی ہے. لوگوں نے بیان کیا, بیان کر رہے ہیں, اہل علم بیان کر رہے ہیں, لکھ رہے ہیں, ڈکشنریاں مرتب ہو رہی ہیں, اس کو کہیں گے نقل لغات, یعنی نسلن بعد نسلن الفاظ کے معنی نقل کیے جا رہے ہیں. پہلا مسئلہ اسی پر مبنی ہے نا. وہ نقل الاعرابات, یہ وہی اعراب ہے, یعنی زیر زبر کس کس مفہوم پر دلالت کرتی ہے, یہ بھی تو اہل علم نقل ہی کر رہے ہیں. ایک صاحب علم تحقیق کرتا ہے, دوسرا اس کو بیان کر دیتا ہے, نقل ہو رہی ہے. وہ تصریفات, اسی طرح لفظ کی کنسٹرکشن میں کیا کیا تبدیلیاں آتی ہیں, تو یہ بھی ایک علم ہے جس کے تحت نقل ہو رہے ہیں. یعنی یہ عربی نہ سمجھیے, دنیا کی ہر زبان میں ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ یہ مقدمہ قائم کر رہے ہیں. ماننا اول احوال تلک الناقلین انہم کانوا ہذا, یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ جس وقت ایک آدمی سیوے تھا اس نے گرامر کی تحقیق کی, عربوں کی گرامر کی, یہ بہت بڑا آدمی ہے, یعنی آپ سمجھیں کہ جیسے فقہ میں ہم ابو حنیفہ میں ویسے ہی سیوے. تو سیوے جو ہے اس نے مثال کے طور پر تحقیق کی, تو بندہ کتنے بندے تھے, ایک. اس ایک بندے نے تحقیق کر کے اپنی رائے بیان کر دی, اس کے بعد 10 بندے اور پیدا ہوئے عالم فاضل, انہوں نے اس کی کتاب کو مزید آگے بہتر کیا اور کتاب لکھ دی. اب بے شک 10,000 نہیں, 10,00,000 نہیں, 10,00,000,000 لوگ اس بات کو مان رہے ہوں, भाई ये पदाई कौन था? एक था ना, तो एक बंदे ने जो कुछ अख्ज किया था। अच्छा, आप दुनिया में किसी ग्रामर की तारीफ पढ़ लें, ऐसे ही होगा। लुगत की तारीफ पढ़ लें, ऐसे ही होगा। यानी मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया था कि अरबी जुबान में इस वक्त जो सबसे बड़ा मजमुआ है हमारे पास वो लिसानुल अरब है, तो वो 5 आदमियों की तहकीकात का मजमुआ है जो उन्होंने तहकीकात की हुई। तो उन तहकीकात को जब उन्होंने किया है तो जाहिर है कि एक ही आदमी है जो इब्तिदा में बयान कर रहा है भी अरब यूं बोलते हैं या गालिब यूं बोलता है। तो अब उसके बाद 10,000 हों, 20,000 हों, तो वो आदमी तो एक ही था। तो वो ये कहते हैं कि ये जो इब्तदाई आदमी हर फन में है, 1, 2, 4 होंगे बस, इससे ज्यादा तो नहीं होते। दुनिया भर में ऐसे होते हैं, अंग्रेजी में भी ऐसे ही, इब्रानी में भी ऐसे ही, उर्दू में भी ऐसे ही। व रवायतुल अहाद ला तुफीद इल्ला ज़न, कहते हैं ये तो पहले ही माना जा चुका है कि एक या दो या चार बंदों की जो रिवायत होती है इससे यकीनी इलम तो हासिल नहीं होता। बंदे ही है ना, 2-4, तो इससे तो हासिल नहीं होता। व एजन फतिलकत दलायल मौकूफा अला अदम इश्तराक, कहता है चलो ठीक है, लुगत से निकल आए, ग्रामर से निकल आए, लेकिन आगे फिर मसले हैं। मसले ये हैं कि एक लफ्ज था, हमने लफ्जों पर बहस की थी, याद होगा आपको वो लेक्चर, कि एक लफ्ज है मिसाल के तौर पर ऐन, उसका मतलब चश्मा भी है, उसका मतलब आंख भी है, इसको कहते हैं इश्तराक। तो ये तय करना पड़ेगा ना कि यहां ये ऐन जो है ना, इसका मतलब वो नहीं है, तो ये तय करने का अमल भी जन्नी है। वह अदमिल मजाज, किस शेर की आमद है कि रन कांप रहा है, ये बात कि यहां शेर से मुराद चिड़ियाघर वाला शेर नहीं है, ये मजाज को तय करना पड़ेगा ना उसमें। वह अदमिन नकल, एक लफ्ज था गुस्सा, उसके मानी नकल ही नहीं हुए। ये देखे ना उन्होंने, यानी सारी जुबान के इलम को की ऐसी तैसी कर दी, मखदूश करना शुरू कर दी। वह अदमिल इजमाल, यानी ये देखना पड़ेगा कि भाई ये बात वाजे है, मुजमल नहीं है, क्योंकि मुजमल बात की जब आप तफसील करते हैं तो कुछ से कुछ बन जाती है, तो पहले उसकी नफी करेंगे तो फिर किसी नतीजे पर पहुंचेंगे ना। वह अदमित तख्सीस, लफ्ज जो है वो बोला तो गया था कि ये सारी क्लास, लेकिन या ये सारे लोग, तो ये सारे लोग से मुराद सिर्फ इस क्लास के लोग हैं, इसकी नफी करनी पड़ेगी तो बाकी लोगों तक बात पहुंचाई जाएगी ना। ये क्या है तख्सीस, आप इस पहले जान चुके हैं क्या। वादमिल मुआरिज़ुल अक़ली, यानी कोई चीज जो है वो अकलन उस मफहूम को लेने में रुकावट बन रही है तो उसकी नफी करनी पड़ेगी कि नहीं बनती, अकलन ये बात ऐसे हो सकती है। तो कहते हैं कि फ़इन्ना बे तकदीर हुसूल ही यजिब सरफुल लफ्ज़ लिल मजाज, यानी इनमें से कोई चीज भी मौजूद हो, मिसाल के तौर पर लफ्ज मुश्तरक हो गया है, मानी 2-3 है, उसमें कोई किनाया या मजाज का तरीका पैदा हो गया है, उसमें कोई तख्सीस हो गई है, हर जुबान की बात कर रहे हैं, तो पहले आपको ये बताना पड़ेगा ना कि ये सब जो है ये नहीं है। अगर नहीं है तो फिर वो कहते हैं कि लफ्ज असल में मजाजी हो गया है, मतलब अब इसके बारे में ये बात तय करना कि ये हकीकी मफहूम में इस्तेमाल हुआ है ये मुश्किल हो गया। वला शक अन्ना एतकाद हाजिल मुकदमात जन्नुम महज, यानी ये जितनी बातें की जाएंगी वो कहते हैं ये महज जन है। वल मौकूफ अल जन उला ये कूना जन, और जो चीज इतने बहुत से जुनून पर मबनी है वो बदरजा अतम जन्नी, देखा आपने, यानी अब क्या पढ़ना कुरान। तो गोया उन्होंने सारी जो गुफ्तगू थी वो ये पहुंचा दी यहां पे कि जनाब ये हमारी जो जुबान है, खा वो उर्दू है खा अंग्रेजी है खा कुछ है, इसमें असल में ये सारी चीजें जब तक वाजे नहीं हो जाती तो लफ्ज के मानी तक पहुंचना ही मुमकिन नहीं होता, और ये जितने जराए आप लफ्ज तक मानी के पहुंचने के इख्तियार कर रहे हैं ये सारे के सारे इब्तदान 1-2 आदमियों ने बताए हैं और वो नकल होते हुए आ रहे हैं। तो 1-2 आदमियों की बात तो जन्नी होती है, तो जो उस जन्नी पर मबनी है वो बदरजाए उला जन्नी है, तो जब वो बदरजाए उला जन्नी है तो वो क्या है, वो कुरान की इबारत है, तो वो जन्नी है, तो जितना मर्जी यकीनी तरीके से मुंतकिल हुआ वो मतलब जन्नी हो गया, और जब मतलब जन्नी हो गया है तो वो कहते हैं कि फिर उसके बाद बस, फिर उसके बाद खत्म, उसके बाद हम और हमारी अकल। तो ये आपने इस बहस को इजमालन देख लिया, इसको थोड़ा सा मैं मजीद वाजे करूंगा इंशाल्लाह अगली नशस्त में, ताकि ये समझ में आ जाए आपकी, क्योंकि ये वो बहस है کہ جو امام رازی کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی، بلکہ موجودہ زمانے میں جب فلسفے میں کچھ کہنے کے لیے باقی نہیں رہا تو وہ فلسفی آف لینگویج بھی بدلا ہے، اور اس کے نتیجے میں پورے پورے اسکولس آف تھاٹ پیدا ہوئے ہیں مغرب میں، جنہوں نے اپنی ساری بحث کی بنیاد اس پر رکھ کر جتنے بھی قدیم ٹیکسٹ ہیں علوم کے، صرف مذہبی نہیں، ان کو چیلنج کر دیا۔ تو اس وجہ سے ہم اس بحث کو ذرا تفصیل کے ساتھ کریں گے۔